الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس رب کا کرم ہے، اس کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور تاک رات نصیب کی ہے. بہت ممکن ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہو. اب فقط ایک اور رات باقی رہ گئی ہے، اور پھر یعنی تاک رات باقی رہ گئی ہے، اور پھر یہ مہینہ مکمل ہو جائے گا. کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے محنت کر کے بہت زیادہ کمائی کر لی ہوگی، اور کچھ لوگوں نے سستی میں اس کو گنوا دیا ہوگا یا وقت ضائع کرتے رہے ہوں گے. کچھ لوگ راتوں کو جاگ کے بھی اور عبادت نہیں کر رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ عبادت میں محنت کر کر کے تھک رہے ہوں گے. امام ابن القیم فرماتے ہیں، بے وقوف ترین شخص ہے وہ جو سفر کے آخر میں بھٹک جائے جبکہ منزل قریب ہی ہو. تو جیسے رمضان کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف ہوتا ہے، تو اکثر لوگ تھک جاتے ہیں، لیزی ہو جاتے ہیں. لیکن امام صاحب نے کیا فرمایا کہ بے وقوف ترین ہے وہ جو سفر کے آخر میں آ کے بھٹک جائے، کیونکہ اب منزل قریب ہے، لیکن اس وقت وہ تھک کے بیٹھ جاتا ہے، بالکل اس کچھوے اور خرگوش کی کہانی آپ نے سنی ہوگی. خرگوش کو لگتا ہے کہ منزل قریب ہے، لہٰذا اب تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں، اور وہ دوڑ کو جیت نہیں پاتا، آرام میں لگ جاتا ہے. تو محنت کے تھوڑے ہی دن باقی ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ کا شوق کم ہو جائے، یہ نہ ہو کہ آپ کی ہمت کم ہو جائے. ہمت پوری رکھنی ہے. خاص طور پہ آج کل پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، کبھی کوئی ایسا وقت ہوتا ہے کہ رائٹ اینڈ لیفٹ کسی نہ کسی کی وفات کی خبر آ رہی ہوتی ہے. اور اس عشرے میں اور اس مہینے میں بہت ساری ایسی خبریں آئی ہیں. ہر دفعہ میں یہی سوچتی ہوں کہ اللہ، پتہ نہیں اگلے سال تک بھی کون رہتا ہے اور کون نہیں رہتا. تو اس عشرے کو گنوانا نہیں ہے، اس عشرے میں اتنی محنت کرنی ہے. اور محنت صرف جاگنے میں نہیں کہ ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ ہم بس جاگیں، محنت عبادت میں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے عبادت کروا لے، توفیق دے دے، ہمت دے دے، اور اس کو قبول بھی فرما لے. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے. یاد رکھیے گا، یہ گھڑیاں قیمتی ہیں، اور ان کو قیمتی بنانے والی چیز کیا ہے؟ یہ قرآن کا نزول، یہ قرآن کا آنا، اور یہ وہ گھڑیاں ہیں جو ہمارے لیے ہماری آخرت میں بہت بڑا نیکی میں اضافہ کر سکتی ہیں. ان گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے عروج پہ ہے. آج میں آپ کو ایک سوال دینا چاہتی ہوں، جو کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس سیشن کے بعد، جس پہ آپ غور کریں گے. وہ سوال یہ ہے کہ مجھے کون بچائے گا، مجھے کون بچائے گا کہاں پر؟ ہر اس مرحلے میں جو آخرت میں آنا ہے، رائٹ فرام دا بگننگ، جب دوسری زندگی شروع ہوگی جس کا نام موت ہے، ہم اس کو موت کہتے ہیں لیکن اصل میں دوسری زندگی کا آغاز ہے. تو جب وہ زندگی شروع ہوگی، اس میں مجھے کون بچائے گا؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہر ہر مرحلے کو سوچیے گا، اور سوچیے گا کہ کون سی چیز ہے جو مجھے وہاں چاہیے ہوگی، کون ہے जो वहां पे मेरा सहारा होगा और जिसकी मुझे जरूरत होगी, उसके साथ मेरा ताल्लुक कैसा है। ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को, इस पे गौर करें, इसको सोचें। आज ये रहमत की रातें हैं, ये वो रातें हैं जिनमें हम अपनी बख्शिश करवा सकते हैं। वो रातें हैं जिसमें अल्लाह ताला की रहमत इतनी उरूज पे है कि हमारे पिछले सारे
हाँ
गुनाह माफ हो सकते हैं, सारे गुनाह। तो लिहाजा इन रातों को ऐसे गुजारना है कि जब ये रातें खत्म हो जाएं, रमजान खत्म हो, तो हमारी बख्शिश हो चुकी हो। अल्लाह ताला बड़ा ही मेहरबान है। कभी भी अपने गुनाहों की वजह से ये ना सोचिएगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब तो क्या फायदा। अल्लाह ताला इंसानों की तरह नहीं कि जैसे इंसान है, जरा सा भी किसी से कोई गलती हो जाए तो हम 10 दफा उसको जताते हैं, 10 दफा उसको याद कराते हैं उसकी गलती, और वो माफी मांग भी रहा हो तब भी हम छोड़ते नहीं है बात को। अल्लाह ताला ऐसा नहीं, वो बड़ा मेहरबान है और उसकी रहमत से ही हमारी उम्मीद जुड़ी हुई। अगर अल्लाह ताला की रहमत का और बख्शिश का सहारा ना होता तो हम मायूस हो जाते, लेकिन वो बख्शना चाहता है, तभी तो उसने अपने नबी को ये दुआ सिखाई है जो हमारे नबी ने हमें बताई, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के जरिए हमें पहुंची, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ्फा फ़ाफ़ु अन्नी। जाहिर है वो बख्शना चाहता है तो वो ये दुआएं सिखा रहा है, वो चाहता है मेरे बंदे मुझसे बख्शिश मांगे। वो कुरान में फरमाता है, कुल ए नबी कह दीजिए, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया, ज्यादती कर लिए, मेरी रहमत से मायूस ना होना। इन अल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह ताला सारे ही गुनाह को माफ कर देता है। इन्नहू हुवल गफूर रहीम, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला, रहम करने वाला। अल्लाह ताला ने खुद हमें ये पैगाम दे दिया सूरह जुमर में कि जिन मेरे बंदों ने अपनी जानों पे ज्यादती की है, उनको अल्लाह ताला फरमा रहा है ये मेरे बंदे हैं, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ कर देगा। इससे अल्लाह ताला की रहमत की वुसअत को समझे। ला तकना तुम रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाना। और आजकल जैसे हम बहुत सारी ऐसी चीजें सुन रहे हैं, मसलन अभी कल जलजला आया न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, उसकी जलजले के झटके महसूस किए गए। फिर आप फुल सोलर एक्लिप्स आगे आ रहा है रमजान में ही, ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं। और जलजले का आना ऐसी रात में जो रहमत की रातें हैं, जो अल्लाह ताला की भरपूर बरकतों की रातें हैं, सलामती की रातें हैं, इनमें ऐसा होना ये बताता है कि अल्लाह ताला की नाराजगी है। और ये अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग साइंस है, हमें समझ जाना चाहिए। कयामत अब दूर नहीं है, जो दुनिया के हालात चल रहे हैं। अल्लाह ताला अजाब से बचाता है तब जब लोगों के अंदर इस्तिग़फ़ार करने वाले लोग मौजूद हों, जब लोग इस्तिग़फ़ार की तरफ आते हैं, जब लोग तौबा करते हैं। इसका मतलब अभी उनको अपनी इस्लाह की फ़िक्र है, इसका मतलब अभी उनके अंदर नदामत है, इसका मतलब है कि वो नहीं करना चाहते गुनाह, इसका मतलब है वो बाज आना चाहते हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो उस रास्ते पे आ गए हैं जहां से वो अल्लाह ताला की तरफ पलटना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों पर फिर अल्लाह ताला अजाब नहीं भेजता। हाँ, अल्लाह ताला का अजाब उन लोगों पे आता है जो इस्तिग़फ़ार छोड़ देते हैं। ये अल्लाह ताला का प्रॉमिस है कुरान में कि अल्लाह ताला उन पे अजाब नहीं भेजेगा जब तक लोग इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। इस्तिग़फ़ार इसी चीज़ की निशानी है ना कि उनको इस्लाह की फ़िक्र है। जब इस्लाह की फ़िक्र ख़त्म हो जाएगी ना, जब लोगों को परवाह ही नहीं होगी कि ऐसी बरकत वाली रातें हैं और फिर भी गुनाह चल रहे हैं, मस्जिदें भरी हुई हैं लेकिन लोग खेल तमाशों और मेलों में लगे हुए, सजदे करने वाले कम हैं और बाहर खरीदारियां करने वाले ज्यादा हैं, इसका मतलब परवाह नहीं रही। ना अल्लाह ताला को राजी करने की कोई फिक्र है, ना अपने गुनाहों के पर कोई रोना आ रहा है, ना कोई पछतावे हैं अपनी पिछली जिंदगी पे। इन रातों में भी गफलतें खत्म नहीं हो रही तो कब खत्म होंगी? ये उनके हाल हैं जो इन दिनों और रातों की बरकतों को जानते हैं, जिनको पता है कि ये कौन सा टाइम है, जब भी तो उन्होंने मस्जिद का रुख किया। और वो जो इसके अलावा बैठे हैं वो तो बेशुमार हैं। हमारी हालतों को देखें, इज्तमाही तौर पे भी हम नीचे जा रहे हैं, इंडिविजुअली भी हमारे हालात सही नहीं है। ऐसे में हम सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अशद जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह के अजाब ना आए हमारे ऊपर, बिजलियां ना टूटे हमारे ऊपर, तो हम इस्तग़फार करें। ये एक हल्का सा झटका अल्लाह ताला ने दिखाया, इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड भी हो सकता था, लेकिन वेकअप कॉल है। जो ना रब को माने ना उनको उसके बारे में कुछ पता है, उनके तो हालात ही अलग हैं। लेकिन जो मानते हैं, जो समझते हैं, वो भी अगर बेपरवाह हो जाएं तो क्या बनेगा फिर? हमें उनमें शामिल नहीं होना कि जो इन दिन और रातों में भी गफलतों में पड़े हों। पता नहीं फिर कौन सी चीज जगाएगी अगर हम अभी भी ना जागे। दुनिया के हालात देख के भी अगर हम सोए हुए हैं और मस्त हैं और हमारे मजे खत्म नहीं हो रहे और हमारे फन और हमारी इंजॉयमेंट और हमारा पार्टी टाइम ओवर नहीं हो रहा, तो ना जाने कब हम फिर सुधरेंगे। हमारे लिए जरूरी है कि हम इस्तग़फार करें, क्योंकि अल्लाह ताला तो बख्शने को तैयार है, अल्लाह ताला तो माफ करने को तैयार है। अगर इंसान ही पलटे नहीं तो उसकी अपनी बदबख्ती है, वो लूजर है। अल्लाह ताला तो फरमाता है, वह रहमती वसियत कुल्ला शही, मेरी रहमत तो हर चीज पे छाई हुई है। तो अल्लाह ताला की रहमत तो इतनी वसी है, हर चीज पे छाई हुई है, फिर भी इंसान अल्लाह की रहमतों को समेटने वाला ना बने। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह आले इमरान में, वह युहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह ताला तुम्हें अपने पकड़ से डराता है। वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, वो अपने बंदों पे बड़ा ही रऊफ है, शफकत करने वाला। वो डराता भी है अपने अजाब से कि मेरी पकड़ से बच जाओ लोगो, इन्ना बतशा रब्बी कला शदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, फिर तुमसे सही नहीं जाएगी। लेकिन अगर इंसान डरे ही ना, अगर इंसान इस तरफ तवज्जो ही ना करे और जो चल रहा है बस अच्छा चल रहा है, तो फिर जब पकड़ आती है तो कितनी सहना उसको मुश्किल होता है। अल्लाह ताला की रहमत की वुसअत का अंदाजा आप इस बात से कीजिए कि अगर काफिर को भी अल्लाह ताला के पास मौजूद तमाम तर रहमत की वुसअत का अंदाजा हो जाए तो वो भी कभी जन्नत से मायूस नहीं होगा, इतनी ज्यादा अल्लाह ताला की रहमत है। और ये भी है हदीस में कि अगर मोमिन को ये पता चल जाए कि अल्लाह ताला के पास अजाब कितना ज्यादा है, तो कभी जहन्नुम से बेखौफ नहीं होगा। यानी एक तरफ उसके अजाब भी बहुत सख्त है, दूसरी तरफ उसकी रहमत भी बहुत ज्यादा है। हम क्या चाहते हैं अपने लिए? अल्लाह के अजाबों से हमेशा डरते रहना और उसकी रहमत से कभी मायूस ना होना, उसकी रहमत को मांगना हमेशा, उसके तलबगार रहना, अल्लाह ताला को दिखाना कि मैं अल्लाह तेरी रहमत की कितनी ज्यादा मोहताज हूं। यकीन अल्लाह ताला की रहमत ही तो है कि जब बंदा गुनाह भी करता है तो दाएं तरफ बैठा हुआ फरिश्ता 6 साआत तक अपने कलम को रोके रखता है। अगर ये बंदा पशेमान हो जाए, अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार कर ले, तो वो फरिश्ता अपना कलम पीछे हटा लेता है, वरना सिर्फ एक गुनाह लिखता है। सोचें, सिर्फ एक गुनाह लिखता है, नेकियों की तरह नहीं कि नेकी की तो 10 लिख ली। अल्लाह ताला नेकी करने वाले के लिए नियत पे एक नेकी लिखता है और 10 उस वक्त उसके लिए लिखी जाती हैं जब वो अमल कर लेते हैं, लेकिन गुनाह एक ही लिखा जाता है, वो 10 नहीं लिखे जाते। ये अल्लाह की रहमत नहीं तो और क्या है? कितनी सारी बशारतें कि ये पढ़ लोगे तो ये अजर मिलेगा, ये कर लोगे तो इतना बड़ा अजर है। कितनी सारे हम अजर की बातें पूरे रमजान में करते रहे, इतने छोटे छोटे अमल के ऊपर कितना कुछ मिलने के वादे, फिर भी अगर हम सुस्ती करें, गफलत करें, सुन रहे हैं लेकिन हमें कोई परवाह ही नहीं। सोचते हैं कि बस ठीक है, कर लेंगे, नहीं भी किया तो कोई मसला नहीं। सुन सुन के हमने कागज भरे हुए हैं लिख लिख के, लेकिन अमल में एक भी चीज नहीं है। हम क्या अल्लाह की रहमतों को समेटने वाले हैं? तो ये दिन और रातें तौबा इस्तगफार करने की हैं, और इस दुआ के अंदर भी तौबा ही तो है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़ा फ़ाफ़ अन्ना, इसमें तौबा ही तो है, इसमें बख्शिश की तलब ही तो है। और जब कोई बंदा अल्लाह ताला के हजूर तौबा करता है तो अल्लाह ताला को तो इतनी पसंद आती है उसकी तौबा, वो उस आदमी से भी ज्यादा खुश होता है जो किसी जंगल में अपनी सवारी पे सवार हो, उस पे उसका खाना है, पीना है, सब चीज उस पे लदी हुई है, सहरा में है किसी जगह मसलन, अचानक वो सवारी उसे गुम हो जाती, कब सवारी पता नहीं कहाँ चली गई, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, यानी समझ लें कि अब मौत का इंतजार वो करेगा, क्योंकि ना सवारी है, ना कोई इंसान बशर, बंदा बशर, ना कोई चीज, कुछ भी नहीं, दूर दूर तक सिर्फ रेत उड़ती भी नजर आ रही है बस। वो आखिर सवारी से मायूस होके एक दरख्त रे आके लेट जाता है। जब मायूस हो गया, सो गया, उठा तो देखा अचानक सवारी उसके सामने खड़ी, वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है क्योंकि उसको लाइफ मिल गई, वो डेथ के किनारे पे था, उसको लाइफ मिल गई, तो वो खुशी से कहता है, ए अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब। उसको ये भी नहीं, इतनी जज्बात में होता है, उसको ये भी नहीं पता चलता कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं। हदीस में आता है अल्लाह ताला इस बंदे से भी ज्यादा खुश होता है इंसान की तौबा करने पे। हजरत उमर बयान करते हैं कि आपसे सलम के पास कुछ कैदी लाए गए, आपने देखा उनमें एक औरत है, वो दौड़ती फिरती है, जब कैदियों में उसे कोई बच्चा नजर आता है तो उसको पकड़ के अपने सीने से चिमटा लेती और उसको दूध पिलाने लगती। ये देख के आपसे सलम ने फरमाया, क्या तुम समझते हो कि ये औरत अपने बच्चे को आग में फेंक देगी? हमने कहा नहीं, अल्लाह की कसम ये तो कभी नहीं ऐसा कर सकती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदों में से बंदों पे इससे भी कहीं ज्यादा बढ़ के मेहरबान है जितनी ही ये औरत अपने इस बच्चे के ऊपर, दूध पीते बच्चे के लिए मेहरबान है। यानी अल्लाह ताला नहीं चाहता कि तुम्हें आग में डालें, वो तो चाहता है कि तुम बच जाओ, इसीलिए तो उसने ये रमजान का महीना भी दे दिया, इतने जन्नत के दरवाजे भी सारे खोल दिए, जहन्नम के भी बंद कर दिए, शैतानों को भी कैद कर दिया, अजर भी इतना इतना गुना बढ़ा दिया कि बस तुम एक दफा मांगो तो सही, तुम एक दफा आओ तो सही मेरी तरफ, तुम पलटो तो सही, मगर अभी भी कमियां हैं, अभी भी हमारी तलब में, तौबा को मांगने में वो तड़प नहीं है कि हम तड़प जाएं, हम ऐसे तड़पें जैसे कि कोई सांप का डसा हुआ तड़पता है कि अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, बस ऐसी हमारी तड़प नहीं है। अल्लाह ताला के वादे तो कितने हैं, वो कहता है अल्लाह अकबर कि आदम के बेटे इब्ने आदम, तू जब तक मुझे पुकारता रहेगा और अपनी उम्मीदें मुझसे ही वाबस्ता रखेगा तो मैं तेरे गुनाहों को माफ करता रहूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। वला उबाली, मुझे नहीं कोई परवाह होगी। ए आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदी तक पहुंच जाए फिर तू मुझसे बख्शिश मांगे तो मैं तुझे बख्श दूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। और ए आदम के बेटे, अगर तू जमीन भर के गुनाहों को लेकर मेरे पास आए फिर तू मुझे इस हाल में मिले कि तूने मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, तो मैं भी तुझे इतनी मग़फ़िरत के साथ मिलूंगा कि उससे जमीन भर जाए। अल्लाह अकबर, कि तुम जितने गुनाह भी ले आओ जब तक तुम अल्लाह ताला से बख्शिश दिल से मांगते रहोगे, और बख्शिश मांगने का मतलब समझते हैं सिर्फ तौबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह कर लेना नहीं, ये फिक्र हो जाना कि मैंने गलती की है अब मेरा क्या बनेगा, ये पछतावा होना कि ये मैं क्या कर बैठी, ये निदामत होना कि मैंने अपने रब का हक अदा नहीं किया और मुझे तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, मेरे रब के एहसानात तो मेरे पर बहुत ज्यादा है, ये मैं क्या कर बैठी, एक पल के लिए भी नहीं मुझे तो उसकी नाफरमानी करनी चाहिए थी, ये मैंने क्या कर दिया, ये निदामत होनी चाहिए। तब जब इंसान को फिकर पड़ जाए कि मैंने अपने आप को सही करना है, ये मैं गलत चल रही हूं, तू है ये तौबा, वरना तो सिर्फ लिप सर्विस ही है, इधर तौबा तौबा उधर उठ के फिर वही काम। फिर इन रातों में भी सोचे जो इतनी सलामती वाली बरकतों वाली रातें हैं, रमजान जा रहा है हमें पता है कि जा रहा है फिर भी पार्टी टाइम हमारा खत्म नहीं हो रहा, हर मस्जिद में देखें मेला ज्यादा नजर आता है और इबादत कम, कहने को खत्मे कुरान के लिए हम आए होते हैं लेकिन यूं लगता है कोई फैशन शो पे आए, में बाजार लग रहा होता है, मस्जिद बाजार ज्यादा लगता है और इबादत की जगह कम, पार्टी ज्यादा लग रही होती है और नमाजें कम पढ़ी जा रही होती हैं। तो अल्लाह ताला को तो हमने अपना शौक दिखाना था इबादत का, मस्जिदें भरना ये मकसद नहीं होना चाहिए, इबादत मकसद है, मस्जिद इबादत की जगह है, मेले ठेलों की जगह नहीं, और हम इस पे ही बहुत खुश होते हैं कि देखो मस्जिदें कितनी भर गई, भर गई किससे, मेलों से, ऐसे भरने का क्या फायदा। लिहाजा हम अपनी इस्लाह की फिक्र करें, हम ये फिक्र करें कि अल्लाह ताला पता नहीं इन रातों में भी हमारी बख्शिश हुई कि नहीं हुई, पता नहीं फरिश्ते हमारे घर आए कि नहीं आए, पता नहीं हमारे घर भी इस काबिल हैं या नहीं है, पता नहीं अल्लाह ताला की नजरे करम इन रातों पे मेरे ऊपर हुई और मेरे खानदान पे हुई या नहीं। जिस बंदे को ये फिक्र लगी हो उसको मौज मस्तियां याद रहती हैं, अल्लाह ताला की रहमत की वुसअत बहुत है, उसमें कमी नहीं है, हमारे मांगने में कमी है, हमें ना मांगना आता है और ना ही हम मांगने की हिर्स रखते हैं, और अगर ये रातें भी गुजर गई तो और कौन सा वो वक्त आएगा जिसमें हम तौबा इस्तग़फ़ार के लिए सीरियस होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा साल हम इन्हीं दुआओं के ऊपर सरवाइव करते हैं जो हम ये रमज़ान की आखिरी अशरे में ख़ास तौर पे मांगते हैं, ये हमारा फ्यूल है जो हमें लेके चलते हैं पूरा साल, तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं के ऊपर आती है जो अल्लाह ताला की तरफ पलटते हैं, जो अल्लाह ताला के सामने तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। बनी इसराइल के दौर में एक दफ़ा बारिश नहीं हो रही थी, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके नमाज इस्तस्का के लिए निकले, दुआ मांगी, वो दुआएं मांग रहे हैं और धूप और तेज़ होती जा रही, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह बारिश मांगी और धूप तेज़ हो गई, अल्लाह ताला ने फरमाया एक फर्द तुम में ऐसा है जिसकी नाफरमानी इतनी है कि जब तक ये तुम्हारे अंदर है बारिश नहीं होगी। सोचें, एक आदमी ऐसा था और बारिश रुक गई। और जब अक्सरियत ही ऐसी हो जाए कि गुनाहों से भरे पड़े हैं, तो रहमतें कहां से आएंगी? एक आदमी की वजह से बारिश रुकी थी, बारिश रहमत है ना। और आवे का हवा ही बिगड़ जाए तो क्या होगा? जवान देखो, बूढ़े देखो, हर एक गफलत का शिकार। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों को कि देखो भाई, इस वजह से बारिश नहीं हो रही, ये एक बंदा तुम्हारे अंदर ऐसा है, उसकी वजह से सारे ही बारिश से महरूम हो गए। लिहाजा वो जो भी है वो निकल जाए हमारे अंदर से, ताकि बाकी तो महरूम ना हो ना। अब वो एक बंदा जो था ना, उसको पता था कि मैं ही हूं, असल मेरी वजह ही है, मेरे गुनाह ही ऐसे हैं। उसने इधर देखा उधर देखा, कोई और नहीं निकल रहा। अब दिल में कहने लगा कि मैं अगर बाहर निकलूं तो मैं तो जलील हो जाऊंगा, सबको पता चल जाएगा कि यही है, और अगर मैं खड़ा रहता हूं तो बारिश नहीं होगी। अल्लाह अकबर। अब वो दिल ही दिल में कहने लगा, या अल्लाह, मैंने तेरी बड़ी नाफरमानी की है, और तूने मेरा हमेशा पर्दा रखा, तूने कभी मुझे जाहिर नहीं होने दिया। अल्लाह तेरी बड़ी मेहरबानी, आज मेरी इज्जत रख ले, मैं तौबा करता हूं। और साथ ही उसकी आंखों से आंसू निकले, और अभी उसके अल्फाज खत्म हुए कि हवा का रुख बदल गया, बारिश की आमद आमद होने लगी, बादल आए, बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह, निकला तो कोई भी नहीं, बारिश किसकी वजह से हो गई? अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसकी वजह से बारिश रोकी हुई थी उसी की तौबा की वजह से अब बारिश कर दी। जब इंसान तौबा करता है ना, तो अल्लाह की रहमतें उसकी तरफ मुतवज्जे होती हैं। और जब इंसान गुनाहों के अंदर पड़ा रहता है, गफलतों में पड़ा रहता है, उसको परवाह ही नहीं, डजंट केयर, वो तौबा हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि कोई कॉन्सिक्वेंसेस उसको अभी नहीं नजर आ रहे ना। ना वो अंधा हो रहा है, ना वो बहरा हो रहा है, ना उसकी कोई सांस लेने में कोई मुश्किल हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा ना, सब अच्छा चल रहा है, खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, खेल तमाशे मिल रहे हैं, मौज मस्ती चल रही है, तो परवाह ही नहीं है। और जरा सी हमारी रस्सी खींचने लगे ना, तो हमारी चीखें निकल जाती हैं फिर, क्योंकि हम बहुत लग्जरीज के आदी हैं, हम बहुत आराम तलब हैं, हम बहुत तयशात में रहते हैं। तो ऐसा वक्त ना आने दें कि अल्लाह ताला रस्सी खींच ले और फिर हमें होश आए, पहले ही अल्लाह के सामने आके अपने आप को गिरा दें, पहले ही अल्लाह ताला के आगे तौबा इस्तगफार कर लें, पहले ही अल्लाह ताला को मना लें। और ये जुर्रत ना करें कि अल्लाह ताला के गजब को ललकारें, ये जुर्रत ना करें कि अल्लाह के अजाबों को आवाज देने लग जाएं। बहुत कुछ हो रहा है हमारे सामने, बहुत कुछ हो रहा है, अगर आज भी हमने इबरत ना पकड़ी और आंखें ना खोली और अल्लाह के आगे गिर के हम ना रोए, तो कब रोएंगे? कब वो वक्त आएगा? क्या अभी भी हमारी आंखें नहीं खुल रही? अभी भी ये है कि ये किसी और के साथ हो रहा है, हमें क्या? हमारी जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है ना, क्या अभी भी आंसू नहीं निकल रहे? किसी ने मुझे ये लिखा है कि मैं क्या करूं, मेरे तो कभी आंसू निकलते ही नहीं। ये भी दिल की सख्ती की अलामत होती है, आंख का जामिद हो जाना, आंख का खुश्क हो जाना दिल की सख्ती की अलामत है। इसका मतलब दिल अंदर पत्थर है, दिल नहीं है, पत्थर है अंदर। और दिल की सख्ती बदबख्ती है। तो आंखों में आंसू आना इस बात की अलामत है कि इंसान को पछतावा है, और पछतावा होना चाहिए, और अपने गुनाह याद आने चाहिए। मत ये कहा करें, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया,
मत ये कहा करें मैं कौन सी गुनाहगार हूं, जो लोग तो इससे भी ज्यादा करते हैं। अपनी नेकी के जोम में खुदा के लिए मत रहें। ये शैतान इंसान को बड़ा नेकी का जोम देता है कि तू तो बड़ी अच्छी, तू तेरे से ज्यादा नेक कौन हो सकता है। अल्लाह अकबर। और इंसान इसी जोम के अंदर धोखा खा जाता है, इसी खुशफहमी में रहता है। अल्लाह अकबर। इंसान कभी भी इस खुशफहमी में ना रहे, अपने आप को बड़ी चीज ना समझे, बल्कि हमेशा अपनी चीजों को, अपने आमाल को कम समझे कि मेरा मेरे पास कोई अमल नहीं है और मुझे अल्लाह की रहमत की जरूरत है। तब देखिए अल्लाह की रहमत जरूर आएगी आपके लिए। लेकिन अगर अपने आप को इतना बड़ा समझ लिया, क्योंकि तो बड़े बड़े असलाफ, बड़े बड़े लोग जो होते थे वो डरते थे, वो रोते थे। एक इमाम थे, उन्होंने बहुत बड़े मुहदिस भी थे, बहुत सारी अहादीस भी उन्होंने लिखी, नरेट की। जब उनकी वफात का वक्त आया तो वो इस चीज के ऊपर नहीं थे कि मैंने तो इतनी अहादीस लिखनी, मैंने तो इतनी खिदमत कर ली, और तब भी रो रहे थे कि अल्लाह ताला मुझे बख्श दे, और अल्लाह ने मुझे ना बख्शा तो मेरा क्या होगा। इतनी खिदमतें करके भी उनके ये हाल थे, और हमें, हमने कुछ भी नहीं किया, फिर भी हमें डर नहीं लगता। शायद हमें पता ही नहीं कि अगली मंजिलें कितनी मुश्किल हैं। इसीलिए मैं आपको ये चाहती हूं कि आप लिखें कि मुझे कौन बचाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप को दें, मुझे कौन बचाएगा। बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने आप को खड़ा करें हर जगह पर और ये सोचें, इस जगह पे कौन बचाएगा, इस जगह पे कौन बचाएगा। और इसका जवाब अपने आप से मांगे, ये फिर क्या अल्लाह ताला को ऐसा मना लिया मैंने कि वो मुझे बचा लेगा? क्या मैंने अल्लाह ताला से ऐसी दोस्ती की है? क्या मैंने अल्लाह ताला के इतना राजी किया हुआ कि वो वहां पर, ऐसी जगह पे जहां पे मेरा कोई भी ना होगा, वहां पर वो मेरा साथ देने वाला होगा, वहां पे वो मुझे बेसहारा नहीं छोड़ेगा? इन सवालों के जवाब अपने आप से मांगे, खुद को खुद जवाब दें, सेल्फ एनालिसिस करें। ये रातें इसी चीज के लिए हैं, तभी इंसान को अपनी हकीकत पता चलेगी और तभी रोना भी आता है फिर। वरना तो जाहिर है अपने हालात से ही अगर वाकिफ नहीं है तो किस बात पे रोएंगे।